चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गोपाल हलधर की जय। श्री राधा गोकुलेश्वर की जय। श्री निताय गौर हरि की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। कौन सा श्लोक
48 and 49
लास्ट क्या बोलते हैं हिंदी में 48-49 को?
48 और 49
हरे कृष्णा वैभव हरि बोल। 47-48 बोलते हैं ना 48 को, और 49
तो 39 हो गया।
क्या बोलते हैं हिंदी में 49 को? हिंदी में क्या बोलते हैं?
49 मराठी में 49 बोलते हैं।
29
महाप्रसाद बोल लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं
सरस्वतीं व्यासं
सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ग्रंथराज
श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद तेरवाध्याय ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन श्लोक संख्या 48 और 48 हिंदी को 49 क्या बोलते हैं 49 बोलते हैं 49 और 39 को 49 49 तो 48 और 49 तो मेरे प्रभु है किधर है
अच्छे
है ना अल्लाह ने माइंड ठीक राजेश्वर प्रभु एक इधर है स्ट्रॉन्ग नाउ तो 48 में तात्पर्य है और 49वां श्लोक उसमें तात्पर्य नहीं है, वो अंतिम श्लोक है अध्याय का, इसलिए हम साथ में ऊपर कौन सा है
48वां
है ना विचिक्युरुर्व्यामतिशोककातरा
यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः
विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः विचिक्युरुर्व्यामतिशोककातरा
यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः
पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः
विचिक्युरुर्व्यामतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः
विज्ञाय
निर्वेद्यगतं पतिं प्रजाः
विज्ञाय निर्वेद्यगतं पतिं प्रजाः
पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः
पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः
विचिक्युरुर्व्यामतिशोककातरा
विचिक्युरुर्व्यामतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः
विज्ञाय
जानकर
निर्विद्य
उदास
गतं
चला गया
पतिं
राजा
प्रजाः
समस्त नागरिक
पुरोहित आमात्य
मंत्री
सुहृद
मित्र
गण आदयः तथा सामान्य जन विचिक्युः खोजने लगे उर्व्याम
पृथ्वी पर
क्यों उर्व्याम का मतलब पृथ्वी पर कैसे पृथ्वी का है? अर्थ क्या है उर्वी और एक शब्द है पृथ्वी के लिए उर्वी पृथ्वी के और कौन से शब्द है
धरती
वसुंधरा वसुधा अवनी
धरित्री
मही तो ये सब पृथ्वी के नाम उर्वी ये सब पृथ्वी के नाम है संस्कृत में इसलिए उर्व्याम मतलब उर्वी के ऊपर पृथ्वी पर अतिशोक कातराह अत्यंत दुखी होकर यथा
जिस प्रकार
निगूढ़
छिपा हुआ
पुरुषम
परमात्मा को
कुयोगिनः अनुभवहीन योगी अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है तो समस्त नागरिक पुरोहित मंत्री मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है तात्पर्य यहाँ पर अनुभवहीन योगी द्वारा अपने भीतर परमात्मा की खोज करने का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है परम सत्य को तीन प्रकार से जाना जाता है निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान ऐसे अनुभवहीन योगी कुयोगिनः चिंतन द्वारा निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं किंतु प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा को नहीं ढूंढ पाते जब राजा ने घर छोड़ दिया तो यह निश्चित था कि वह अन्यत्र कहीं ठहरा होगा किंतु नागरिकों को पता न था कि उसकी खोज कैसे की जाए इसलिए वे अनुभवहीन योगियों की तरह क्षुब्ध थे श्लोक 49 केवल मैं श्लोक पढ़ूंगा और अनुवाद पढ़ूंगा अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर् हतोद्यमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य साश्रवो साश्रवोन होना चाहिए साश्रवोन Sashravo here. Rishin sametam abhivandya sashravo nyaveda nyaveda yanpaurava bhartri viplavam. जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता न चला तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर को लौट आए, जहां पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री सुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा तो कौन राज्य छोड़कर चले गए? महाराज अंग। क्यों छोड़ के चले गए? चिंताय गौर हरि की जय। क्यों छोड़ के चले गए?
पुत्र के कार्यों से परेशान।
पुत्र के कार्यों से परेशान होकर चले गए। तो विरक्ति ये संसार से अलग अलग कारणों से उत्पन्न हो सकती है। वैराग्य की भावना, और इसलिए भगवान ने संसार में यहाँ दुख दिया है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि ये संसार दुखों का आलय है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, दुखों से भरा हुआ है। तो भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसे क्यों की? इस संसार को भगवान ने ऐसे क्यों बनाया कि ये बिल्कुल दुख से भरा हुआ है? क्यों ऐसे भगवान ने किया? तो इसका उत्तर कौन देंगे? भगवान ने इस सृष्टि की में दुख इतना क्यों डाला है?
अगर यहाँ पर भगवान दुख नहीं डालते तो फिर जीवात्मा यहीं पर अपना हमेशा के लिए रहने का प्रबंध सोचता कर, यहीं पर रहने का प्रयास करता। तो दुख इसलिए डाला कि वो ये इससे भी श्रेष्ठ जगह है जो भगवान का धाम है, तो वहाँ जाने के लिए प्रेरित हो किसी न किसी प्रकार से।
ठीक है, तो ये भी सही उत्तर है कि भगवान ने ये सृष्टि में दुख इसलिए दिया है ताकि जीव ये ना सोचे कि मैं हमेशा यही रहना चाहता हूँ, यही अच्छी जगह है रहने के लिए। तो दूसरा प्रश्न, तो यदि ऐसे होता तो बुराई क्या थी उसमें? ऐसे बना दिया होता कि यहाँ हम रह के खूब आनंद ले, खूब भोग करें और सुख मिले और यहीं पे जीते रहे, क्या समस्या थी उसमें?
यहाँ का आनंद जो है वो असली आनंद नहीं है।
यहाँ का आनंद असली आनंद नहीं है, क्यों नहीं है?
क्योंकि असली आनंद आध्यात्मिक जगत में है, यहाँ जो आनंद अनुभव करते हैं वो तथाकथित आनंद है और हमें लगता है कि ये असली है।
लेकिन यहाँ पे असली आनंद क्यों नहीं दिया फिर भगवान ने?
जब जीव भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं तब जाके वो आनंद ये कर सकते हैं, उनसे जब चले जाते हैं तो कभी कभी भी खुशी में नहीं रह सकते।
क्यों? सही है लेकिन क्यों? अब मैं वकील की तरह बात करूंगा, प्रश्न पूछूंगा। हाँ, क्यों ऐसे?
क्योंकि उदाहरण जैसे दिया जाता है कि जब जैसे पेट और बाकी अंगों का उदाहरण दिया जाता है, तब जब बाकी अंग कोऑपरेट करते हैं तो खुद सब संतुष्ट रहते हैं और सुदृढ़ रहते हैं, लेकिन वो बाकी अंग अगर सेपरेटली ये करेंगे तो दुर्बल बन जाते हैं।
ठीक है, और कोई? हाँ
जी, मेरे स्वरूप कृष्ण है नित्य दास।
मतलब
उसको कृष्ण को सेवा करना ही जीवात्मा का गुण है, वो निज गुण है, और उधर भगवान के पास जाने के बाद ही उसको असली आनंद मिलेगा। उसके लिए इसको भौतिक दुनिया दुखमय है और आध्यात्मिक सुखमय है,
क्योंकि हम जी भगवान के अंश हैं, तो अंश होने के कारण हम उनके बिना रह नहीं सकते वास्तव में, और अगर हम रहने का प्रयास कर रहे हैं तो वो कृत्रिम है और वो नकली है। वास्तव में जब भगवान के अंश में उनकी सेवा करेंगे तभी वो पूर्ण रूप से हम संतुष्ट।
बहुत अच्छा, हम भगवान के अंश है। कैसे भगवान के अंश है? नहीं, अंश कैसे है? ममयवांश जीव लोक जीव भूत सनातन, हम अंश मात्र है। और जब हम अपने आप को अंश है ये भूल जाते हैं, भगवान से हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है? हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारा मूल्य नहीं रहता, हम सुखी नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे उंगली है, ये उंगली को यदि बहुत कुछ हो गया, जैसे ये अंगूठा है, अंगूठा ये एक, आप एकलव्य की कथा जानते हैं ना, कितना वो तीर चलाने में निपुण था, प्रवीण था, लेकिन उसको दक्षिणा क्या मांगा? अंगूठा काट दो। एक बार अंगूठा काट लिया तो धनुष नहीं चला सकते, तीर नहीं चला सकते। वैसे देखा जाए तो इतना ही छोटा है ये अंगूठा, इतना, लेकिन अंगूठे को कुछ हो जाए तो हम कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते है कि नहीं? इतना छोटे अंगूठे के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं हम, ताकि अंगूठा ठीक हो जाए। लेकिन यही अंगूठा यदि ऐसे हम देखें कि किसका कट गया और ऐसे कहीं खेत में पड़ा है, जाके देखा अरे अंगूठा है, तो वो अंगूठे का कोई मूल्य है क्या? हाँ, एक अंगूठा हम देखते हैं किधर पड़ा हुआ है सड़क में, कोई मूल्य नहीं ना उसका। अंगूठे का मूल्य कब होता है? जब वो शरीर से जुड़ा हुआ होता है तब उसका मूल्य होता है, तब वो अपना काम कर सकता है। अंगूठा अकेला ऐसे इस सड़क पर पड़ा रहेगा तो उसका कोई मूल्य नहीं है और ना वो अपना कार्य कर सकता है, तो फिर अंगूठा संतुष्ट कैसे हो सकता है? जब हम अपने स्थान में रहते हैं, अपना काम करते हैं, तब हम खुश रह सकते हैं। जब हमको एक स्थान से लेकर कोई दूसरे स्थान पर ले करके रखा जाता है जहाँ हमको अच्छा नहीं लगता, जहाँ हमको लोग के पहचान करने, स्थान पहचान करने, और ऐसे काम दिया जाता है कि जिसका हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हाँ, तो हमको कैसे लगेगा? तो उसी तरह से जीवात्मा का स्थान क्या है कि जीवात्मा भगवान का अंश है। तो जब जीवात्मा भगवान से जुड़ा हुआ रहता है तो वो सुखी रह सकता है। जुड़ा हुआ रहने का मतलब है कि भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने का ये भावना है। जब वैसे तो हम भगवान से अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं, परंतु हमारी भावना में हम अलग हो सकते हैं कि मैं भगवान से अलग होके मैं भोग करना चाहता हूं। तो अपने मन से भगवान से हम दूर हो गए हैं और हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र होकर भोग कर सकते हैं। तो जब हम अलग हो जाते हैं भगवान से अपनी मानसिकता में, अपने सोच में, तब क्या होता है कि सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। जैसे अंगूठा कहीं पड़ गया, उसका क्या कीमत है। तो भगवान से अलग होकर हमारा मूल्य क्या है, कुछ भी नहीं है। जब आत्मा शरीर से चले जाता है तो ये शरीर का मूल्य क्या होता है। शरीर को क्या करते हैं, हम जला डालते हैं ना। हम उसको कोई अच्छी तरह से रखते हैं, सजा के रखते हैं घर में। लेकिन जब शरीर जीवित रहता है, जब शरीर में आत्मा रहता है, उस समय अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पहनाते हैं उसको, है कि नहीं। उसको सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब आत्मा चली जाती है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। उसी तरह से हम भी जब भगवान को छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा कोई मूल्य नहीं। इसलिए कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं। तो जब ये हमारे धर्म से, ये मूल धर्म, सनातन धर्म इसको बोलते हैं, हमारा सनातन धर्म क्या है कि भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है, अमर, शाश्वत, जो हमेशा रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, वो है सनातन। तो इस तरह से जीव का सनातन धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना। परंतु जब हम भगवान को भूलकर स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं तो कैसे सुख मिल सकता है। तो भगवान यदि यहां भौतिक सृष्टि में सुख बना के देंगे भी तो वो सुख नकली ही होगा, क्योंकि भगवान से अलग होके, हमारे स्वरूप से भिन्न होके हम कैसे सुखी हो सकते हैं, संभव नहीं है। जैसे आप मछली को पानी से निकालोगे और उसको, अच्छा सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सा है आजकल, कौन सा गाड़ी है आजकल सबसे एकदम, रोल्स रॉयस। और भारत में, भारत में कौन सा है, मर्सिडीज गाड़ी। तो ऐसा यदि हम करेंगे कि पानी से एक मछली को निकालेंगे और मछली को पानी से निकाल के उसको बोलेंगे हम तुमको मर्सिडीज गाड़ी देंगे, हाँ, और तुमको सबसे बढ़िया फोन, नया सबसे बड़ा जो फोन है वो तुमको देंगे, और सबसे बड़ा जीन पैंट वगैरह सब तुमको देंगे, हाँ, और तुम्हारे सामने हम पाव भाजी और ये सब रबड़ी ये सब रखेंगे, हाँ, और क्या क्या चाहिए तुमको, अच्छा पलंग देंगे, अच्छा सब कुछ देंगे तुमको, टेलीविजन भी सामने रखेंगे। तो मच्छी क्या खुश होगी, क्यों नहीं खुश होगी मच्छी। आपने कौन बताएंगे, नहीं जिसने अभी तक उत्तर नहीं दिया, समझ लो ना, मैं काल काय बोल लो, हिंदी समझते है तुम्हारे, तेर मनोज क्यों मछली खुश नहीं होगा,
क्यों पानी के बिना नहीं रह सकती,
क्यों, क्योंकि मछली का स्वभाव ही है पानी में रहना, बराबर। तो पानी से निकालेंगे उसको और कुछ भी देंगे,
सारे दुनिया का धन उसको दे दो, सारे दुनिया का भोग उसको दे दो, उसको राजा भी बना दो, मछली को लेकर सिंहासन पे बिठाओ, उसको किरीट डालो, मुकुट डालो, तुम राजा हो संसार के। बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए?
पानी
चाहिए, क्योंकि वो पानी के बिना रह ही नहीं सकती। तो ऐसे ही कृत्रिम अवस्था में मछली को रखेंगे, पानी से निकाल के उसको सारा दुनिया भी दे दो उसको, लेकिन जब तक उसको पानी में नहीं डालोगे वो सुखी नहीं होगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से जीवात्मा को भगवान के सेवा से निकाल के सारा दुनिया भी दे दो उसको, सुखी नहीं हो सकता है। ये सब झूठा है, झूठा सुख। हमको लगता है कि सुख है करके, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है, क्योंकि असली सुख को हम भूल गए। इसलिए भगवान ने यहाँ पे जानबूझ के दुख दिया है, ताकि हम सोचें कि अरे मैं किधर पड़ा हूं, ये मेरा स्थान नहीं है। फिर भी ये भौतिक आसक्ति ऐसी है कि हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आता। केवल जिस व्यक्ति ने ऐसे कोई सुकृति की होगी पूर्व जन्म में, तब उसके हृदय में कोई वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। अच्छी बातें जब हम सुनेंगे किसी से, उसको हम पालन कर पाएंगे जब कुछ सद्बुद्धि हो, है ना। जैसे हम किसी को बोलेंगे कि देखो गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी एकदम तेजी से नहीं चलाना, खतरा है, इसे अपघात हो सकता है और इसे बहुत नुकसान हो सकता है। तो बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? सुनेगा, हाँ भाई सही है, हाँ गाड़ी बहुत तेज चलाने से खतरा है, कुछ भी हो सकता है, मेरी भी गलती नहीं हो, सामने वाले की गलती भी हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए गाड़ी तेजी से नहीं चलाना चाहिए, सावधानी से चलाना चाहिए। तो ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। उससे कम बुद्धि वाला क्या सोचेगा? ठीक है आप जो बोलते हैं सही है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि गाड़ी तेज गति से चलाने से नुकसान होता है क्या किसी का। और जब देखता है कि कोई एकदम रोड़ करके चलाता है, मोटरसाइकिल चला के फिर अपघात हो जाता है, तब वो समझता है कि हाँ तेज चलाने से देखो वो आदमी का कैसे अपघात हो गया, कितना नुकसान हो गया, तो मुझे तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। तो ये दूसरे श्रेणी का आदमी। पहले श्रेणी का आदमी कौन था? केवल सुन के पता चला कि सही क्या है गलत क्या है, कर लिया। दूसरे श्रेणी का आदमी कैसा था? किसका अनुभव?
दूसरे
का अनुभव देख के, हाँ अरे उसका एक्सीडेंट ऐसा हो गया, अरे अब हमको भी सावधान रहना चाहिए। तीसरे श्रेणी का आदमी क्या सोचता है? सुनता है, दूसरे का अपघात होता है वो देखता है, लेकिन वो सोचता है उसको चलाना नहीं आता था ना, मैं तो बढ़िया चला सकता हूँ, मेरे को क्या होगा। हाँ तो वो लगाता है एक्सेलरेटर और क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अभी सीख जाता है, अभी नहीं करूंगा, अभी आज से गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा। लेकिन एक चौथा श्रेणी का आदमी भी होता है, वो क्या करता है? सुनता है कि गाड़ी तेज चलाने में खतरा है, देखता है कि दूसरे ने गाड़ी चलाने से उसका एक्सीडेंट, उसका अपघात हो गया, खुद गाड़ी तेज चला के उसका अपघात हो जाता है, फिर भी सोचता है नहीं फिर भी गाड़ी चलाऊंगा तेज, फिर दोबारा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी सीखता नहीं, फिर चलाता है, चलाते रहता है, बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, फिर भी हम होंगे कामयाब। देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, हम चलाएंगे, डरना थोड़ी है, डरेंगे नहीं, हम बहादुर हैं, हम चलाएंगे। तो चौथे श्रेणी का आदमी ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में भी लोगों को बताया जाता है कि देखो ये दुनिया दुख का है, पाप कर्म करने से दुख मिलेगा, तुम पाप नहीं करो, क्योंकि ये हमारा स्थान नहीं है। हमारा स्थान है भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा में ही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो प्रथम श्रेणी का आदमी क्या करेगा, तुरंत मान लेगा। हाँ, जैसे सबसे बुद्धिमान, जैसे देखो अभी आमटे के लड़के आए ना इधर, है ना, बाकी लड़कों से कितना सुनना पड़ा होगा मालूम नहीं, ए काय कुठे चलला तुम्ही, चलो आम्ही जाऊ हॉटेल मध्ये जाऊ, आम्ही थोडा ऐश करू, या हे काय तुम्ही कुठे चालला सेवा करायला भगवंताची, पण सुना नाही उनका बात, आए इधर भगवान का सेवा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना था भक्तों से कि भगवान का सेवा करने से बहुत सही मार्ग है, इसलिए दूसरों को बात न सुन के इधर आ गए गोकुलधाम में सेवा करने के लिए। इधर उनको ये गुलाब जामुन रबड़ी वबड़ी नहीं मिलता है, न इनको कोई टेलीविजन मिलता है इधर, न कोई सिनेमा मिलता है, लेकिन फिर भी आए ना इधर, बड़े आनंद से रहते हैं कि नहीं। हाँ, क्यों, प्रथम श्रेणी सबसे बुद्धिमान, क्योंकि सुनने से ही पटला भक्त, आइकुन पटला प्रथम श्रेणी। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए अरे इतने छोटे लड़के हैं, अभी पढ़ाई भी दसवीं से यह किया, और इतने बड़े बड़े सब डिग्री वाले हैं, पीएचडी डॉक्टर है, सब है, लेकिन ये सब उनसे भी श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी के है, सुना एक बार कि संसार में सुख नहीं है, भगवान की सेवा में ही सुख है, एक द आइकल पटल आले करे सेवा करेला, ओके नहीं। दूसरे श्रेणी के कौन, जो सुनते हैं कि कुठे दुख है सर जगह मधे सगड़ा सुख सुख है, फिर कभी दूसरों के जीवन में देखते हैं अरे क्या क्या हो गया उसके जीवन में, अरे मुझे भी भगवान के पास जाना चाहिए, दूसरा श्रेणी। तीसरे श्रेणी, अरे उनको हुआ ना हमको थोड़ी होगा, उसके जीवन में कुछ हो जाता फिर भगवान के पास आता है भगवान। हाँ, और चौथे श्रेणी का, उनको बार बार भक्त लोग बोलते हैं अरे जप करा जप करा, लेकिन नहीं मानते हैं, जीवन में ठोकर भी खाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, फिर भी नहीं नहीं करणार भगवंताची सेवा, हरे कृष्ण म्हणा तोंडामधून नाही म्हणणार हरे कृष्ण, म्हटलं हरे कृष्ण पण नाही म्हणणार हरे कृष्ण। वो कहानी एक बार मैंने बताया होगा, एक डॉक्टर हमारे भक्त है वो बताते थे कि एक बार वो ऐसे बूढ़ी औरत उनका उनकी कोई मरीज थे, तो वो बूढ़ी औरत अभी मृत्यु के द्वार पे खड़ी थी, बिस्तर में लेटी हुई थी और कुछ उपाय नहीं था। तो ये डॉक्टर जो भक्त थे उन्होंने वो माताजी से बोला आप हरे कृष्ण बोलिए, वो ज्यादा शुद्धि में नहीं थी, शुद्धि में थी लेकिन इतना तीव्र नहीं था, लेकिन वो समझ पा रहे थे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। बोला हरे कृष्ण बोला लेकिन ऐसे ही देखते रह गए, तो उसने दो बार तीन बार चार बार बोला हरे कृष्ण बोलिए, तो भी थोड़ी बहुत जो ताकत थी वो महिला के अंदर वो ताकत को लेके वो महिला ने क्या किया, ऐसा किया
नहीं।
इसका मतलब
नहीं बोल,
नहीं करो, नहीं बोलूंगी। जितना ताकत उसको लगा सिर हिलाने में, उतना ही ताकत लगा के मुंह से हरे कृष्ण बोल सकती थी, उससे भी कम ताकत लगा के। लेकिन जिद था ना, हरे कृष्णा नहीं बोलना है, भगवान का भक्ति नहीं करना है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने वचन लिया है भगवान का सेवा नहीं करेगा, गृह व्रताणाम अदांत को भी विशतांत मिश्रम, हम नरक में जाएंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे, व्रत लिया है। तो क्या किया जा सकता है ऐसे ठोकर खा खा के। तो ऐसे लोग चौथी श्रेणी के क्यों होते हैं? दुर्भाग्यशाली होते हैं। इसलिए दुर्भाग्यशाली क्यों होते हैं? क्योंकि भक्तों का संग, उन्होंने भक्तों का संग नहीं मिला है और भगवान की सेवा थोड़ी बहुत भी नहीं की है। तो ये भाग्य आता कैसे है? ये भाग्य आता है जब किसी न किसी तरह से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, जाने अनजाने में। इसलिए भक्त लोग सब जगह जाके हरे कृष्ण सब जगह बोलते हैं, ताकि लोगों के कानों में घुस जाए ये शब्द हरे कृष्ण। जब कानों में घुस जाएगा, भले उसकी श्रद्धा हो न हो, उसको जानकारी हो न हो, परंतु भगवान का नाम तो जा रहा है ना कान के अंदर। ऐसे धीरे 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 से भगवान का नाम सुन सुन के उसकी पूंजी थोड़ी बढ़ेगी, भक्ति की पूंजी। फिर कोई हरे कृष्ण भक्त मिला, अरे गया गया थोड़ा प्रसाद गया, वो प्रसाद बोल के नहीं लेगा, थोड़ा कुछ हलवा है, मीठा है, ठीक है, शीरा है ना, अच्छा चला गया, उसको शीरा समझ के लेगा, परंतु प्रसाद है इसलिए प्रसाद अपना काम करेगा शरीर के अंदर। तो इसको अज्ञात सुकृति बोलते हैं। सुकृति मतलब कोई अच्छा पुण्यवान कार्य, भगवान से संबंधित कार्य, परंतु बिना जान के वो करता है, इसलिए अज्ञात सुकृति। इसलिए भक्त लोग सड़क में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, गांव गांव में, शहर शहर में जाके वो कार्यक्रम करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन देते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं सब जगह। तो जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, कम से कम प्रसाद भी पा लिया उन्होंने, कुछ सुकृति हो गई। इस तरह से अनेक जन्मों के बाद फिर वो ऐसे स्थान में आता है जब उसके हृदय में थोड़े कुछ समझ में आती है बात। समझ कैसे आती है? केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से। बुद्धि से समझना एक बात है, हृदय से समझना दूसरी बात है। मराठी मध्ये म्हणतात ना, कळतंय पण वळत नाही। बुद्धीने कळतं पण हृदयाने कळत नाही, त्यामुळे वळत नाही। तो का वळत नाही? कारण त्याने सुकृती नाही केली अजून पर्यंत, त्यामुळे त्याच्या भाग्यामध्ये नाही आहे अजून। पण जैसे जैसे वो भक्तों की सेवा करेगा, वैसे वैसे उसकी सुकृति बढ़ेगी। फिर वो एक वैराग्य उत्पन्न होगा कि अरे ये जगत का भोग भोग करके, ये टेलीविजन, सिनेमा और ये सब मांसाहार करना, शिकार करना, दंगा करना, ये सब क्या है, इसमें कुछ नहीं है, केवल भगवान की सेवा। इसलिए ऐसे एक वैराग्य की भावना किसी के हृदय में उत्पन्न हो जाए, किसी को भगवान के सेवा के लिए कुछ आकर्षण हो जाए, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म से कुछ सुकृति की हुई है। इसलिए हमारे जो आमटे के लड़के अभी आए ना, तो पूर्व जन्म से इनका चलता है, समझ लो। तिगा है इतना तुम्हें आता ले ले, कौन है तिगा है इतना, तिगा है इतना तुम्हें मागच्या जन्मामध्ये पण काहीतरी भक्ती केली आहे, त्यामुळे ह्या जन्मामध्ये तुम्हाला एवढं वाटलं की आम्हाला केलं पाहिजे भगवंतांची सेवा, नाहीतर तुमचे वयाचे मुलं काय करत आहेत, बाहेर जाऊन दंगा करतात की नाही, हां इकडे तिकडे वेळ वाया घालतात की नाही, इकडे तिकडे जाऊन कोणी सिगरेट पिताय, कोणी काय करताय, असं सगळं करतात की नाही तुमचे वयाचे सगळे मुलं, हां पण तुम्ही हे सगळं सोडून इकडे का आलात? कारण मागच्या जन्मापासून हे सुकृती केलेली आहे तुम्ही, आणि त्यामुळे तुम्हाला हे भाग्य मिळालं की आमटे गावमध्ये जन्म मिळाला आणि तिकडे भक्त होते, हां आणि भक्त हरे कृष्ण जप कीर्तन करत होते, आणि मग इकडे गोकुळधाम पण जवळ होता आणि गोकुळधामचे भक्त पण येत जात होते, इकडे पण यायची संधी मिळाली, तर ह्याचा इतिहास आहे. तर त्यामुळे तुम्हाला आता हे संधी मिळाली, आता ह्याचा पूर्ण लाभ घ्यायला पाहिजे. आता आमट्यापासून आहेत आमचे प्रतिनिधी, आधीपासून कोण कोण आहेत आमचे प्रतिनिधी इकडे आमट्याचे? राजेश कृष्ण, सुरेश, सोनार गौरहरी, मनोज आहे की नाही, आणि जवळचे भेटण्याचे देव कीर्तन आहे. ज्ञानेश्वर कुठचं गाव तुझा? गौशेचा. बघा इकडेच आहे, हा किती भाग्यवान, गोकुळधामचे एवढं जवळ स्थान मध्ये जन्म मिळाला, होय की नाही ज्ञानेश्वर? देखो ज्ञानेश्वर भी इनके सर आहे, क्लासमेट आहे. देखो गौसे में कितने सारे लड़के और भी कुछ करते होंगे, करते है ना, इधर उधर घूमते है ना, मोटरसाइकिल में बैठ के वो करके जाते हैं, वो सिनेमा देखने जाते हैं कर, लेकिन ज्ञानेश्वर को कोई रुचि नहीं इन चीजों में. क्यों नहीं? क्योंकि गोकुलधाम के भक्तों से संग मिला, लेकिन दूसरे लड़कों को भी मिला, वो क्यों नहीं आए? त्यांचा वेळ नाही आला अजून, ज्ञानेश्वरचा वेळ आला. क्यों का समय आया ज्ञानेश्वर का? पिछले जन्म में भी कुछ भक्ति किया है, इसलिए भगवान ने अभी अवसर प्रदान किया कि तुम इस जन्म में भी भक्ति करो. कळलंपण आणि वळण वळलंपण, हाँ है कि नहीं? इसलिए जब भी कोई आकर्षण भगवान के प्रति होता है, थोड़ी बहुत भी वैराग्य की भावना होती है, इसके पीछे कोई इतिहास होता है. इसलिए सबको वैराग्य नहीं होता है, सबको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होता है. तो महाराज अंग ने एकदम से ऐसे छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पुत्र वेण इतना दुष्ट था, तो हैरान हो गया, मैं ऐसा पुत्र मुझे मिला क्या फायदा जी के, ऐसा नहीं चाहिए पुत्र, वो चला गया छोड़ के. लेकिन ऐसे बहुत अन्य लोग होते हैं जिनके भी पुत्र दुष्ट होते हैं, परंतु वो इस तरह से वैराग्य नहीं कर सकते हैं, भगवान के लिए नहीं छोड़ के जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनका सुकृति नहीं है. वो क्या करेंगे? वो शराब पियेंगे, अपना दुख को शराब में डुबाने का कोशिश करेंगे, कोई आत्महत्या करेंगे, कोई दूसरे के घर में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए नहीं आएंगे. तो कोई दुख के कारण भी यदि कोई भगवान के शरण में आता है वो भी अच्छा है, कम से कम भगवान के शरण में तो आया ना, शराब पीने तो नहीं गया ना, आत्महत्या करने तो नहीं गया ना. इसलिए जो महाराज अंग ने किया कि अपने पुत्र के दुष्टता से हैरान होकर संसार को त्याग के जंगल में चले गए भगवान की सेवा करने के लिए, तपश्चर्या करने के लिए, तो वो अच्छा है. और वो इतने पुण्यवान राजा थे, इतने धार्मिक राजा थे, इतने अच्छे भक्त थे, उनका स्वभाव भी इतना अच्छा था, और इतने अच्छे राजा भी थे, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रजा का देखभाल किया था जैसे पिता अपने बच्चों का देखभाल करता है, इसलिए प्रजा उनसे इतनी प्रेम करती थी. और जब वो चले गए किसी को बताए बिना, तो फिर सारे प्रजा बहुत दुखी हो गई। और ऋषि मुनि वहां क्यों एकत्र हो गए? क्योंकि उनको भी पता चला, उनको चिंता थी, राजा चला गया तो अब प्रजा की रक्षा कौन करेगा, राज्य को कौन संभालेगा, इसलिए वो सब उधर आ गए। और आगे क्या होगा? अब जब राजा हीन हो गया राज्य, तो अब ऋषि मुनियों की जिम्मेदारी थी कि अब क्या करना चाहिए, राज का अभी आगे कारोबार को कौन संभालेगा। तो अभी अगले अध्याय में इसका आगे का बात क्या हुआ वो शुकदेव गोस्वामी बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो, टाइम हो गया ना प्रसाद का। आप में से कितने भक्त उपचार ले रहे हैं हरिराम प्रभु का, हाथ ऊपर करके।